एक्सीडेंट के बाद जहां आहान सब कुछ भूल चुका था और वो अक्षरा को अपनी डॉल समझ रहा था, तो वहीं उससे अलग चाहत इस वक्त कनाडा में थी। चाहत आहान के बच्चे की माँ बनने वाली थी और लगभग 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। किसी को इस बारे में कानों कान खबर नहीं थी कि चाहत कहाँ है या वो प्रेग्नेंट भी है। कनाडा के एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठी हुई चाहत उस दिन को याद कर रही थी जब वो शादी से भाग कर आई थी, लगभग 7 महीने पहले। रात के लगभग 11 बज रहे थे और इस वक्त चाहत अक्षरा की भेजी हुई गाड़ी में थी। ड्राइवर ने उसे एयरपोर्ट पर छोड़ा और उसे इमरजेंसी टिकट देते हुए कहा, मैडम ये ऑस्ट्रेलिया की टिकट है, 1 घंटे बाद आपकी फ़्लाइट है, प्लीज़ आप तब तक वेट कर लीजिए, वहाँ पहुँचते ही आपके आगे के इंतज़ाम पूरे मिल जाएंगे। ड्राइवर ने उसे साथ में एक आईडी दी थी जो फेक थी। चाहत ने बिना कुछ कहे ड्राइवर के हाथ से टिकट ले ली और अंदर वेटिंग एरिया में चली गई। चाहत वहाँ बैठी आहान के बारे में सोच रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मुझे आहान से बात करनी चाहिए थी? मुझे उन्हें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था, लेकिन उनसे बात करने जाती और उस लड़की की कही बातें सच साबित होती तो वो मुझे कभी खुद से अलग नहीं जाने देते। पता नहीं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी आहान, क्योंकि अब आदत नहीं रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे संभालने वाले हाथों ने ही मेरा गला दबाया था और मेरे अपनों को मुझसे दूर किया था। चाहत वहां बैठकर रो रही थी। अचानक उसे सब कुछ घूमते हुए नजर आया और वो बेहोश हो गई। उसकी मदद करने के लिए आसपास का स्टाफ वहां आया और एयरपोर्ट के मेडिकल इमरजेंसी में उसे एडमिट किया। लगभग 1 घंटे बाद चाहत को होश आया था। उसको ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन तब तक उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी थी। चाहत को होश आया तो उसके पास में एक नर्स खड़ी थी। उसने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अब कैसा महसूस कर रही हैं मैडम आप? शायद आपकी फ्लाइट तो मिस हो चुकी है, लेकिन आपको ऐसी हालत में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, अकेले तो बिल्कुल नहीं। चाहत सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। तभी नर्स ने कहा, लगता है आपको अभी तक पता नहीं है, आपने टेस्ट नहीं किया होगा। एक्चुअली यू आर 3 वीक्स प्रेग्नेंट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। इतना कहने के बाद नर्स दूसरी तरफ चली गई, तो वहीं उसकी बात सुनकर चाहत के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अचानक उसका हाथ अपने पेट पर गया। चाहत की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। अब मैं इस नन्ही सी जान को लेकर अकेले कहाँ जाऊँ? मुझे उस लड़की पर भरोसा नहीं है, लेकिन आप पर भी यकीन नहीं कर सकती आहान कि आपके पास वापस चली आऊँ, चाहत ने सुबकते हुए कहा। चाहत के पास कुछ नहीं था, ना कोई सामान, ना ही कोई डॉक्यूमेंट। अचानक उसकी नज़र अपनी उंगली पर गई, जिसमें उसने आहान की सगाई की अंगूठी पहनी हुई थी। वो ओबेरॉय खानदान की होने वाली बहू थी, तो सगाई की अंगूठी भी मामूली नहीं होने वाली थी। आहान ने वैसे भी चाहत के लिए हर एक चीज़ सिलेक्टिव और एक्सपेंसिव ही सिलेक्ट की थी। चाहत ने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहां से बाहर आई। उसने उस अंगूठी को बेच दिया, जिसकी उसे एक अच्छी खासी रकम मिल गई थी। अब चाहत को जरूरत थी तो अपने डॉक्यूमेंट की। इसके लिए उसने किसी का मोबाइल लेकर श्रद्धा को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही चाहत जल्दी से बोली, श्रद्धा मुझे मेरे डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लीज मुझे कुछ मत पूछना और मैंने बताई हुई जगह पर मेरे डॉक्यूमेंट रख देना। इतना कहकर चाहत ने एयरपोर्ट के पास का एक एड्रेस श्रद्धा को बता दिया। वहीं चाहत की घबराई हुई आवाज सुनकर श्रद्धा भी परेशान हो गई। वो बोली, चाहत कहाँ हो तुम और अचानक शादी से कहाँ चली गई थी? तुम्हें बता भी है आहान के साथ? श्रद्धा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चाहत उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, मुझे आहान के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कुछ बताना भी मत। अगर तूने दिल से मुझे अपनी फ्रेंड माना है या कभी कोई भी रिश्ता हमारा रहा है, तो प्लीज आहान को मेरे बारे में कुछ मत बताना और मुझे भी कुछ मत पूछना, प्लीज मेरी इतनी सी हेल्प कर दे। श्रद्धा ने उसकी बात पर हामी भरी। वो चाहत की बताई जगह पर कुछ ही देर में पहुंच गई थी। चाहत उस जगह पर छुपकर खड़ी हुई थी। वो आखिरी बार श्रद्धा से भी नहीं मिलना चाहती थी। श्रद्धा ने उसके डॉक्यूमेंट रखे और फिर वहां से चली गई। चाहत ने डॉक्यूमेंट उठाकर अपने लिए टिकट बुक कराया। उस वक्त कनाडा की फ्लाइट ही थी जो कुछ वक्त में जा रही थी। चाहत ने एक्स्ट्रा पैसे देकर कनाडा की फ्लाइट बुक की और वहां से ब्रिटिश कोलंबिया की विक्टोरिया सिटी पहुंची। एक अनजान शहर, ना कोई घर, ना ठिकाना और ना ही कोई सामान। घूमते हुए चाहत खाना खाने के लिए सिम्मी ग्रेवाल और उनके हस्बैंड चेतन ग्रेवाल के रेस्टोरेंट में पहुंची और वहीं पर से उसने वेट्रेस की नौकरी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होने के बाद उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह रखना शुरू कर दिया था। पुरानी बातें याद करके चाहत को दुख तो हो रहा था, पर साथ ही उसके चेहरे पर सुकून भी था। सफर भले ही उसका मुश्किल रहा हो, लेकिन साथ ही उसे संभालने के लिए मिस्टर एंड मिसेस ग्रेवाल थे। मैं यही उम्मीद करूंगी कि हम जिंदगी में कभी ना मिले आहान। आप शायद उस लड़की के साथ खुश हैं, तभी आपने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, और अच्छा ही है जो हम वापस नहीं टकराए। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा आपकी तरह हो या आपका साया भी उस पर पड़े, चाहत ने खुद को सख्त करके कहा और फिर उठकर अंदर चली गई।
वहीं इंडिया में आहान से मिलने के बाद अक्षरा और परेशान हो गई थी। रोज रोज उसका अपनी डॉल के बिहेवियर को चेंज होने का कहना और अक्षरा पर शक करने की वजह से अक्षरा को डर लगने लगा था कि कहीं आहान उसे पकड़ ना ले। अक्षरा इस वक्त विजय ओबेरॉय के ऑफिस में बैठी हुई थी और उसे आहान के बिहेवियर के बारे में डिस्कशन कर रही थी। अक्षरा ने विजय को सब कुछ बताने के बाद परेशान स्वर में कहा, अंकल मैं तंग आ गई हूँ उसके बिहेवियर से। क्या उसे पहले भी इतना ही गुस्सा आता था? वो काफी स्मार्ट निकला, उसने हमसे इतनी बड़ी बीमारी के बारे में छुपा कर रखा। तुम बेवकूफ हो, उसकी बीमारी का फायदा उठाओ। उल्टा तुम तो ऐसी हरकतें कर रही हो जिससे तुम पकड़ी जा सकती हो। आहान की कंपनी के शेयर्स अपने नाम तक नहीं करवाए गए अब तक तुमसे, विजय गुस्से में अक्षरा की तरफ देखते हुए बोला। आपको ये सब इतना आसान लगता है? उसकी याददाश्त चली गई है फिर भी वो उतना ही स्मार्ट है। उसे अपने साये तक पर यकीन नहीं है। मैंने उसे कह दिया कि मैं ही उसकी डॉल हूँ, उसे कुछ याद भी नहीं, फिर भी कभी न कभी उसके मुंह से ये निकलता ही रहता है कि मैं उसकी डॉल नहीं हूँ, मैं बदल क्यों गई हूँ। ऐसे लगता है जैसे वो सब जानता है और हमारे साथ खेल रहा है, अक्षरा ने जवाब दिया। विजय ने कुछ पल सोचा, अक्षरा का कहना भी सही था। विजय ने भी आहान से मिलने की कोशिश की। आहान को विजय और उसकी अतीत की कड़वी यादों के बारे में कुछ भी याद नहीं था, पर फिर भी आहान विजय के साथ उतना ही रूठ था। विजय ने गहरी सांस ली और अक्षरा से कहा, एक तो दामिनी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। उसे बच्ची के साथ मेरे घर पर रहने के लिए आना था। शिवानी उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो आहान के पास चली गई। चाहकर भी मैं आहान को अपने झांसे में नहीं ले सकता, वो उसकी माँ है और मुझसे ज्यादा वो उस पर यकीन करता है। हाँ, ये सब कुछ गड़बड़ उस दामिनी की वजह से ही हो रही है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे आपको दामिनी के एड्रेस के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था, अक्षरा ने सिर हिलाकर बेपरवाही से कहा, जिस पर विजय उसकी तरफ गुस्से में घूरने लगा।
विजय अक्षरा की तरफ सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, ये सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से हो रही है, तो दामिनी का नाम मत लो। तुम गलतियों पर गलतियां किए जा रही हो। सबसे पहले तुमने उस लड़की को पता नहीं कहाँ भगा दिया। वो लड़की आहान के साथ रहती थी तो बेवकूफ नहीं थी। अच्छा हुआ वो वापस नहीं आई, पर वो कहाँ गायब है इस बारे में हम अभी भी नहीं जानते। कल को वो वापस आ गई तो तुम्हारी तो छुट्टी हो जाएगी। अब तक उसे वापस आना होता तो वो आ चुकी होती, और यकीन मानिए वो वापस नहीं आएगी। आपने मुझे जो भी स्क्रिप्ट बताई थी मैंने उसे सब वैसा का वैसा बोल दिया था। क्या सच में आहान ने उसकी माँ की जान ली थी? देखा जाए तो आहान ऐसा कर भी सकता है, वो साइको है, अक्षरा ने विजय से पूछा। विजय के चेहरे पर एविल स्माइल थी। अचानक ही उसके सामने हॉस्पिटल का वो सीन आ गया जब वो मास्क लगाकर वहां गया था और उसने निशा की जान ले ली थी। विजय ने अक्षरा की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस लड़की को हमेशा से आहान से दूर करना चाहता था। मौका भी मिला था उसे मारने का, पर बीच में आहान आ गया तो मार नहीं पाया। उनकी बात सुनकर अक्षरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो जल्दी से बोली, इसका मतलब आपने उसकी माँ को मारा है? हाँ, मैंने ही मारा था। मुझे पता चला कि आहान किसी लड़की के साथ रह रहा है और खुश भी है। सोचा उन दोनों के साथ रहने की वजह खत्म कर दूं, तो उस लड़की की माँ को मार दिया। लेकिन फिर भी आहान उसके करीब था तो उस लड़की को मारने का सोचा, पर नहीं मार पाया। अब यहाँ बैठकर टाइम पास करना बंद करो और आहान के पास पहुंचो। यकीन दिलाओ कि तुम उसकी डॉल हो, विजय ने उसे डांटते हुए कहा। अक्षरा ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत वहां से उठकर चली गई। बाहर आते हुए वो धीरे से खुद से बड़बड़ाकर बोली, ये आदमी तो सच में खतरनाक है। मैंने इसे ऐसे ही समझा था, मुझे इससे दूर रहना होगा वरना कहीं ये अपने फायदे के लिए मेरी जान न ले ले। अक्षरा तुरंत ओबेरॉय इंडस्ट्रीज से आहान के ऑफिस पहुंची। अक्षरा आहान के केबिन के अंदर गई तो वो वहां पर नहीं था, वो अपने प्राइवेट रूम में भी नहीं था। अक्षरा ने तुरंत आहान के पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया और उस पर गुस्सा होते हुए कहा, आहान कहाँ है? मैंने तुम्हें कहा था कि उसकी हर एक मोमेंट की इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दोगी। तुम्हें पता है ना एक्सीडेंट के बाद उसे कुछ याद नहीं है, तुम ऐसे कैसे उसकी लाइफ का रिस्क ले सकती हो? सॉरी मैम, लेकिन सर ने ऐसा करने से मना किया था। वो एक्चुअली किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के चलते आउट ऑफ इंडिया गए हैं और उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से मना किया है। अगर मैंने आपको कुछ बताया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे, आहान की सेक्रेटरी ने सिर झुकाकर कहा और फिर वहां से चली गई। अक्षरा के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आहान को मुझ पर शक हो गया है और वो चाहत को ढूंढने गया है? आज से पहले उसने कभी नहीं कहा कि मुझे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आहान कहाँ गया होगा? अक्षरा के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। इतने महीनों में आहान को इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अक्षरा उसकी हर मिनट की अपडेट रखती है, उसका कारण भी वो समझता था। पर आज वो पहली बार अक्षरा को बिना बताए उससे दूर इंडिया से बाहर भी चला गया था। वहीं उनसे अलग इस वक्त आहान एयरपोर्ट पर था और अपनी बिजनेस प्रोजेक्ट के चलते कनाडा की फ्लाइट ले रहा था। क्या लगता है आहान को चाहत से मिलने के बाद सब याद आ जाएगा? पाठ पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।